جزاكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ جو ہماری کلاس ہوتی ہے، ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امور خانداری میں حسن انتظام، اس میں سے ہم رشتہ داریاں نبھانا کا موضوع پچھلے کچھ ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے شاید پڑھ رہی ہیں، اور اس میں شوہر کے ساتھ تعلق، پھر ساس کے ساتھ تعلق، سسرال والوں کے ساتھ تعلق پڑھ چکے، اور اب جو ہے وہ بچوں کے ساتھ تعلق کو پڑھ رہے ہیں. تو پچھلی کلاس میں بچوں کو انعام دیں والا موضوع ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیا تھا. تو اس میں پھر وہ عورتیں خطرناک ہوتی ہیں جو بچے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ خوب پٹائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. گھر میں اگر امی سے پٹائی ہوگی تو ظاہر ہے پھر امی بھی ان کو خطرناک لگیں گی، اور ورنہ اگر امی کی پٹائیاں نہیں بھی ہیں تو پھر اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے اندر پھر ٹیچر جو ہیں وہ پٹائیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا بن رہی ہوتی ہے کہ ایک تو ٹیچر ہوں یا پر ٹیچر ہوں نہیں یا امی ہوں، ٹیچر ہوں یا امی ہوں، تربیت جو ہے وہ دونوں نے نہیں سیکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ پٹائی کر کے تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی بنی ہوتی ہے کہ اپنی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بچے کی تربیت کرنا نہیں سیکھی، اور اس سے پہلے اپنی تربیت جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. تو چونکہ اپنی تربیت نہیں ہوتی تو پھر اس وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں ڈالی گئی ہوتی ہیں تو ان کو مینج کرنا اس کو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں پڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نظام بنایا، یہ اصول بنایا اور ہمیں بتا بھی دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ تو کسی نفس کے اوپر اس کے وسعت سے، اس کی برداشت سے زیادہ ذمہ داری ڈالتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو بھی ذمہ داری پڑی ہوتی ہے، ماں کے اوپر پڑے یا باپ کے اوپر پڑے یا کسی اور انسان کے اوپر پڑے، وہ اس کے وسعت کے عین مطابق ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. لیکن ایک ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کا بھی تو ہمیں مکلف بنایا ہے نا. ٹھیک ہے، تربیت سیکھنے کا بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے نا. لیکن اگر ہم انکار کریں، ٹھیک ہے، انکار کر دیں کہ مجھے علم نہیں حاصل کرنا، مجھے تربیت نہیں حاصل کرنی. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ مجھے کسی تربیت کرنے والے کے ساتھ نہیں جڑنا، مجھے اس کی بات نہیں سننی، مجھے اس کی نہیں ماننی. تو یہ جو انکار کرنے والا انسان ہوگا اپنی تربیت سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوگی. جب اس کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا اس کو نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سب فالو کر رہے ہیں نا اس بات کو کہ جب آپ نے تربیت نہیں حاصل کری تو ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی تھیں تو ان کو نبھانا آپ کو نہیں آئے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک فساد ہوگا، ایک کیوس ہوگا، ایک مصیبت پڑ جائے گی آپ کے اوپر، کیونکہ ہینڈل کرنا نہیں آتا. تو جب ہینڈل کرنا نہیں آئے گا تو پھر مس ہینڈل کریں گی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے پھر جو بے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے تربیت پانے سے انکار کر دیا ہوتا ہے، وہ بے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کو تربیت کا موقع نہیں ملا. نہیں، موقع تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھے ہوئے ہیں، तरबियत पाने के मौके तो अल्लाह ताला ने सबके लिए रखे हुए, सबके लिए बनाए हुए, ठीक है ना। ये तो अल्लाह का करने का काम है, ये कोई इंसान का करने का काम को थोड़ी है कि उसे कोताही हो गई, कि उसने किसी को तरबियत का मौका दिया, किसी को तरबियत का मौका नहीं दिया। ये कोई पीर साहब के करने का काम को थोड़ी है, ठीक है, कि तरबियत के मौाक़े इंसानों को मुहैया करने, ये कोई पीर साहब ने को थोड़ी करना। पीर साहब तो नाकिस इंसान होते हैं, राइट, उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं ना, तो उनसे तो गलतियां हो सकती हैं और होती भी हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, हर इंसान से गलतियां होती है, चाहे शेख हो, चाहे पीर हो, चाहे कोई आम आदमी हो, सबसे गलतियां होती हैं। यहाँ तो इंसान की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो अल्लाह की बात हो रही है, यहाँ तो अल्लाह की बात हो रही है कि अल्लाह ने तरबियत के मौाक़े हर इंसान के लिए मुहैया किए हैं, लेकिन इनकार कर देते हैं उन तरबियत के मौाक़ों में जाना, उससे हम इनकार कर देते हैं, जुड़ने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। काफिर किसको कहते हैं? इनकार करने वाले को, है ना। लफ्जी माना, लफ्ज काफिर का लफ्जी माना क्या है? इनकार कर देना, इनकार कर देने वाला, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी अलैहिस्सलाम का तो इनकार जुबान से नहीं करते, तो हम मुसलमान कहला जाते हैं, हैं, कहलाते हैं मुसलमान, क्योंकि हम जुबान से इनकार नहीं करते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के सिलसिले से तरबियत पाने से तो हम इनकार कर देते हैं, ठीक है ना। तो लफ्ज काफिर लफ्जी मानी में कम से कम हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, होता है कि नहीं होता? कोई जवाब दे कि नहीं मेरे ऊपर नहीं होता, हैं, फिर हम बताएंगे कैसे नहीं होता आपके ऊपर, ठीक है। आपने किया होगा, तरबियत हासिल करी होगी, तो फिर वाकई अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर तरबियत पाने से इनकार कर दिया आपने भी, फिर आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, मेरे ऊपर भी अप्लाई होता था जब तक मैंने इनकार किया हुआ था, मेरे ऊपर भी अप्लाई होता था, ठीक है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, हम तो अल्लाह ताला को एक क्रेडिट देंगे ना कि अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, हमें तौफीक दे दी कि हम अपने शेयर के साथ जुड़ गए और उनसे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत पाने के लिए तैयार हो गए, फिर उनसे पाई, डांटें खाई, ठीक है, फिर उनसे जो है वो सही गलत की तमीज़ सीखी, ठीक है। वरना उससे पहले हम भी मुनकिर थे, राइट, हम भी इस बात के मुनकिर थे, हम भी इस बात के काफिर थे, नहीं करनी, नहीं नहीं पानी है तरबियत, बड़ी उम्र जाया करी इसके अंदर, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि जो तरबियत पाने से इनकार कर देती है तो फिर वो स्ट्रेस में आती है, फिर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में आती है। वाई? क्योंकि उससे मैनेज नहीं हो रहा होता, उससे अपनी जिम्मेदारियां मैनेज नहीं हो रही होती हैं। तो अब जब वो स्ट्रेस में आती है तो फिर वो अपना स्ट्रेस जो है ना, फिर उसके ऊपर निकालती है जिसके ऊपर उसका बस चलता है, जिसके ऊपर उसका बस चलता है ना, उसके ऊपर वो अपना स्ट्रेस निकालती है, ठीक है। मर्द भी ऐसे ही करते हैं, बेतरबियत याफ्ता मर्द, वो भी अपना स्ट्रेस फिर उनके ऊपर निकालते हैं जिनके ऊपर उनका बस चलता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कोई और नौकर हो, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, चाहे वो सड़क पे जाने वाला कोई शख्स हो, उसके ऊपर अपना स्ट्रेस निकालते हैं। रोड रेज इसी को कहते हैं, रोड रेज, सड़क पे आने वाला गुस्सा, ठीक है। तो ऐसे लोग फिर ना बाकायदा ट्रैफिक का कोई मसला हो जाए, उधर लड़ना शुरू कर देते हैं, सड़क के ऊपर ही लड़ना शुरू कर देते हैं, और कुछ मुल्कों के अंदर तो बंदूक निकाल करके गोली मार देते हैं अगले बंदे को, जिसके साथ उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, वो गोली मार देते हैं, इसको रोड रेज कहते हैं। तो ये मर्द भी ऐसे ही होते हैं, बेतरबियत याफ्ता मुनकिर इनकार करने वाले मर्द, वो भी ऐसे ही करते हैं। उसी तरह से औरत भी ऐसी करती है, जिसके ऊपर बस चलता है उसको मारती है, ठीक है। तो आम तौर पर औरत का बस जो है वो बच्चों के ऊपर चलता है, छोटे बच्चों के ऊपर, जब तक वो बड़े नहीं होते उस वक्त तक छोटे बच्चों पे बस चलता है उसका, उनको मारती है फिर, ठीक है। कुछ औरतें होती हैं उनका अपने शौहर पर भी बस चलता है, शौहर जरा भीगी बिल्ली टाइप के होते हैं, तो उनका अपने शौहर के ऊपर भी बस चलता है, वो शौहर के साथ भी बदतमीजियां करती करती फिरती हैं, ठीक है ना। जुबान से, हाथ से नहीं मार सकती तो जुबान से मारती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है ना, फिर दूसरों के ऊपर निकलती है, ठीक है। इन्होंने सवाल पूछा कि रोड रेंज नहीं, वर्ड क्लियर कर दें प्लीज, स्पेलिंग। हाँ, तो उसकी स्पेलिंग बनेगी रोड, ROAD, और दूसरा लफ्ज है रेज, RAGE, रेज, ठीक है। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, उसको रेज कहते हैं, ठीक है, RAGE। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन की तफसील है। अच्छा, तो भाई अपने स्ट्रेस को मैनेज करना जो है ना, वो सीखना पड़ता है, तब फिर इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने जो डाला है ना, वो उसको सही सही मैनेज कर लेता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम जो है ना दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, वो नहीं करता, ये नहीं करता। भाई आपने किया कुछ? आपने तालीम हासिल करी? आपने तरबियत हासिल करी? नहीं, वो क्या चीज़ होती है भाई, तो हमें पता ही नहीं वो होता क्या है, तो फिर क्या होगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि बा उसूल रहें बच्चों की तरबियत में, एक खास बात कि बी कंसिस्टेंट, हमेशा बा उसूल रहें। ठीक है, यानी जो उसूल आपने एक जगह पे बनाया ना, तो उसी उसूल को दूसरी जगहों पर भी अप्लाई करें। ठीक है, इसमें एक अंग्रेजी का लफ्ज है, वो समझना जरूरी है। बा उसूल यानी बी कंसिस्टेंट में अंग्रेजी का एक लफ्ज समझना बहुत जरूरी है। वो लफ्ज होता है डी एस। क्या होता है? डी एज इन डॉग और एस एज इन स्ट्रेस। ठीक है, तो डी एस से बनता क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स। डबल, DOUBLE, डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स का जो लफ्ज है ना, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। उसको फरमा रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। ठीक है, कि एक जगह जो है आप एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जगह आप दूसरा स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर, लेकिन ठीक है, लेकिन DS का एक दूसरा मानी भी होता है, उससे एक दूसरी टर्म भी बनती है डबल स्टैंडर्ड्स के अलावा। वो दूसरी टर्म क्या है? वो है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। क्या है? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डबल नहीं बल्कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये बुरी चीज है, ये बुरे कॉनोटेशन के अंदर, बुरे माने में इस्तेमाल किया भी जाता है और समझा भी जाता है उसको, बुरी चीज डबल स्टैंडर्ड्स रखना। ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ये एक्चुअली बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल नेचुरल चीज है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नेचुरल चीज है, ठीक है ना। और ये लव्स डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ये अल्लाह ताला के इस उसूल के ऊपर भी बिल्कुल फिट होती है। तो अल्लाह ताला ने क्या उसूल बनाया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस आहा, इल्ला वुस आ, इल्ला वुस आ हा। क्या मतलब? कि जिसकी जितनी वुसअत है ना, अल्लाह ताला उसके ऊपर उतना बोझ डालते हैं। तो इससे क्या पता चला? जिसकी जितनी वुसअत, क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदे की अल्लाह ताला ने वुसअत मुख्तलिफ बनाई है। ठीक है ना, हर बंदे की कैपेसिटी टू टेक लोड डिफरेंट है, अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वुसअत डिफरेंट बनाई, तो फिर जो तकलीफ डालते हैं अल्लाह ताला किसी बंदे के ऊपर, वो तकलीफ भी डिफरेंट होती है ना फिर, क्योंकि हर बंदे की वुसअत डिफरेंट है। तो उसके ऊपर जो तकलीफ यानी बोझ या उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो भी डिफरेंट होगी। अब कोई कहे कि नहीं, आपने क्यों डिफरेंट बनाई है, या क्यों आपने डिफरेंट जिम्मेदारियां डाली, ये तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो गए। इसके ऊपर आपने ज्यादा डाल दी, इसके ऊपर आपने कम डाल दी, इसके ऊपर आपने उस शक्ल की डाल दी, इसके ऊपर आपने इस शक्ल की डाल दी, ये तो जी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आपने एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखा, हर इंसान के लिए एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखा? तो भाई अल्लाह ताला का क्या जवाब आएगा? तू अल्लाह है कि मैं अल्लाह हूँ? तू खालिक है कि मैं खालिक हूँ? ठीक है ना, अल्लाह ताला का यही जवाब आएगा ना, कि भाई किसने बनाया, मैंने बनाया कि तुमने बनाया? मैंने बनाया ना, तो मैंने स्टैंडर्ड्स, मैंने जो है वो वसतें डिफरेंट बनाई हैं, तो मैं उन वसतों के हिसाब से बोझ डालूंगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? ठीक है ना, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हर एक के साथ डिफरेंट मामला रखा है, तो इसको फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी क्या कहा जा सकता है। इसको कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कह सकता, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कह सकता। ठीक है, तो लोगों के साथ डिफरेंटली डील करना होता है और हर एक को उसके हिसाब से डील करना होता है। ठीक है ना, तो ये कंसिस्टेंसी के खिलाफ नहीं है, ये बात बाउसूल रहने के खिलाफ नहीं है। ठीक है, दूसरों की बेटियों के लिए अलग उसूल होते हैं, अपनी बेटी के लिए अलग उसूल होते हैं। ठीक है ना, शरीयत तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक तवक्कुआत होती है ना, अपनी बीवी से डिफरेंट और दूसरों की बीवियों से डिफरेंट भाई। ठीक है ना, वो दूसरे की बीवी है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो जाने अपनी बीवी के साथ, वो उसका जवाब दे है, और मेरी बीवी के साथ भाई मैं जवाब दे हूं, ठीक है ना, मैं जवाब दे हूं, तो मैंने उसके हिसाब से अपनी बीवी के साथ मामला करना है, उसने अपने हिसाब से अपनी बीवी के साथ मामला करना है, तो अब मैं किसी दूसरे की बीवी के साथ वैसा मामला तो नहीं कर सकता ना जैसे अपनी बीवी के साथ करता हूं। तो कोई कहे कि नहीं ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो हकीकत क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, एज लॉन्ग एज कि आप शरीयत के किसी उसूल को नहीं तोड़ रहे, ठीक है ना, अल्लाह के किसी हुक्म को नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी यही फरमाते हैं, राइट, कि ए क्या है वो आयत सूरह अहज़ाब ही की है ना, अज़वाज मुतहरात को मुखातिब फरमाते हुए कि तुम अगर बुरा काम करोगी तो तुम्हें दोहरा अजाब होगा, ठीक है ना, और दूसरी औरतें अगर बुरा काम करेंगी तो उनको दोहरा नहीं होगा, उनको इकहरा होगा, वन टाइम अजाब होगा, तुमको टू टाइम्स अजाब होगा। भाई क्यों, वो भी तो औरतें हैं, ये भी तो औरतें हैं, राइट, उनकी भी तो बायोलॉजी सेम है, इनकी भी तो बायोलॉजी सेम है, तो फिर उनको दोहरा अजाब क्यों, इनको इकहरा अजाब क्यों, इसलिए कि उनको अल्लाह ताला ने नबी की बीवी बनाया है, उनको अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे अच्छे खानदान की घरवाली बनाया है, सबसे अच्छे घरों की घरवाली बनाया है, दूसरों को नहीं बनाया, दूसरों को ये नेमत नहीं मिली, दूसरों को ये फजीलत नहीं मिली, दूसरों को ये इज्जत नहीं मिली, तो उनके साथ उनके हिसाब से जो है वो हिसाब किताब होगा, और अजवाज मुतहरात के साथ जो इज्जत और मर्तबा उनको मिला है उनके हिसाब से हिसाब किताब होगा, उनके साथ अलग मामला, इनके साथ अलग मामला। तो कोई कहे ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, नहीं भाई, क्यों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बेशक हैं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो गली के बच्चे के साथ फिर माँ का भी यही मामला होता है कि जो गली का बच्चा होता है, दूसरों का बच्चा, तो वो कोई गड़बड़ करता है, तो जो अच्छी माएँ होती हैं वो क्या कहती हैं, अब क्या करें, वो तो मोहल्ले वाले बच्चे हैं ना, हम उनकी तो तरबियत नहीं कर सकती, लेकिन अपना एक मिनट, मिनट, दोबारा शुरू कर लें प्लीज। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में काफी सारी बात हो गई, लेकिन मसला ये है कि एक मिनट जी, ओके ठीक, तो हमेशा बाउसूल रहे हैं, तो इसमें बस इतनी सी बात होती है कि अपनी जात को भी नेक बनाना होता है और दूसरे को से भी फिर आप तवक्को करते हैं जिसकी आप तरबियत कर रहे हैं, ठीक है, बस कंसिस्ट। अच्छा सॉरी, एक और भी मसला होता है कि जो अपनी औलादें होती हैं ना उनके दरमियान फिर हम बहुत ऊंच नीच करना शुरू कर देते हैं, किसी को जो है वो बहुत डांट डपट शुरू कर देते हैं जो हमें किसी वजह से अच्छा लग रहा होता है, और दूसरे को जो है वो हम बहुत ज़्यादा उसकी लाड़ प्यार शुरू कर देते हैं, तो इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। फरमाया कि जब आपके अपने मामूलात में ऊंच नीच हो, अमल में ऊंच नीच हो, तो फिर बच्चा कैसे कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अपने मामूलात को भी जो है ना वो उसूल पे ही लेकर के चलना चाहिए। बच्चे से जो तवक्को कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि खुद उस चीज़ के खिलाफ कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स ना देखे, ठीक है, ड्रामे ना देखे और फिल्में ना देखे और वीडियो गेम्स ना खेल ना देखे, लेकिन आप खुद जो है वो ड्रामे देख रही हैं और जिसको इंडिया में सीरियल रही हैं, हम का लफ्ज गूगल ना देख वो, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी है, चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म की इनकंसिस्टेंसी से मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे ना तो फिर बच्चा जो है वो आपके भी खिलाफ हो जाएगा और हर नेकी की बात के भी फिर वो खिलाफ हो जाएगा। वो फिर आपसे नेकी की बात को सुनना ही नहीं चाहेगा जब आपके अंदर इस किस्म की वो बेउसूली देखेगा। ठीक है, अलबत्ता अगर फोन का यूजेज है, फोन का यूजेज, ठीक है, यानी सही इस्तेमाल फोन का, जैसे कि आप क्लास के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो रिकॉर्डिंग्स शेयर होती हैं उनको सुनने के लिए अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, या उसके ऊपर जो अच्छा मवाद, तरबियती मवाद शेयर होता है उसको पढ़ने के लिए फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे को आपने फ़ोन देने से इनकार किया हुआ है कि बच्चा आप फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, तो बच्चा आपसे कहेगा कि अम्मी आप तो हर वक्त फ़ोन देखती रहती हैं, आप जो है वो फ़ोन के ऊपर जो है वो चीज़ें सुनती भी रहती हैं, तो फिर मुझे क्यों मना कर रही हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास ये जवाब मौजूद होना चाहिए कि बेटा मैं जो हूँ फोन को मिसयूज नहीं कर रही, अब्यूज नहीं कर रही, मैं फोन के ऊपर सिर्फ काम की चीज जो कि दुनिया और आखिरत के फायदे की चीज है, मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ, ठीक है, और उसके अलावा बेफायदे की और फजूल चीजें जो हैं वो मैं फोन के ऊपर नहीं देख रही हूँ। ठीक है, आप चूंकि ये वाला अभी काम नहीं कर रहे हैं, आप इन क्लासेस का हिस्सा नहीं हैं, आप जो है वो इन चीजों को नहीं पढ़ सकते हैं, भी आपका इतना लेवल नहीं हुआ है, इस वजह से आप, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड ही कहलाएगा कि भाई माँ के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है, वो फोन के जरिए से क्लासेस ले रही है, फोन के जरिए से जो है वो तकरार सेशंस को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, लेकिन बच्चा तो वो नहीं कर रहा ना, तकरार सेशन ज्वाइन करना और क्लासेस लेना और जो है वो तरबियती मटेरियल को पढ़ना, तो उसके लिए फोन की इजाजत नहीं है। लेकिन हम ऐसे होने चाहिए तब हम ये बात कर सकते हैं, वरना अगर हम भी थोड़ी देर जो है वो चलो क्लासेस भी ले ली और बाकी वक्त जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखने के अंदर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, तो फिर आप बच्चे को ये नहीं कह सकते, ठीक है ना, फिर आपका बच्चा जो है ना वो आपके खिलाफ हो जाएगा और फिर अल्लाह ताला उसको जो है ना फिर यानी फिर वो आपके लिए एक आजमाइश बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं करें, बच्चों के मददगार बने। फरमाते हैं कि फिर हमेशा बी सपोर्टिव टू चिल्ड्रन, अपने बच्चों की मदद कर, अपने बच्चों का किसी मामले में भी मजाक ना उड़ाएं, और अगर कभी बच्चा अपसेट है तो उसको समझने की कोशिश करें कि बच्चा अपसेट क्यों है और उससे मुश्किल सूरत हाल से निकलने में मदद करें। ठीक है, तो तंज करना कुछ खानदानों के अंदर भी बड़ा आम समझा जाता है, तंज करना, और अगले बंदे से तवक्को होती है कि वो हम जिस तरह कभी तंज करें ना तो वो जो है बर्दाश्त करें। ठीक है, अब ये जो गंदी आदत होती है ना खानदानों के अंदर तंज करने की, दूसरों को चढ़ाने की गंदी आदत, ठीक है, तो अब जाहिर है ये आदत जो होती है तो फिर ये तो फिर निकल नहीं जाती ना एकदम से कि जी अब जो है वो औलाद हो गई है तो अब ये गंदी आदत खत्म हो जाएगी, नहीं, आदतों को तो खत्म करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना, अल्लाह से दुआएं भी मांगनी पड़ती हैं और कुछ अपने ऊपर जबर भी करना पड़ता है, तब जाके आदतें खत्म होती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि आदत खत्म करने के लिए सब कुछ तो नहीं किया, अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, तो पहले दूसरों के साथ ये तंज का मामला चलता रहता था, अब अपनी सगी औलाद के ऊपर भी तंज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भाई आपकी सगी औलाद जो है, तो ये कोई आपके जीन्स के अंदर से तंज लेकर के थोड़ी आई है कि उसको तंज बर्दाश्त करना जो है वो अल्लाह ताला ने वदियत फरमाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो माहौल से इंसान इस किस्म की गंदी आदतें अडॉप्ट करता है। तो अभी आपके बच्चे के अंदर ये गंदी आदत है ही नहीं तंज करने की और तंज अडॉप्ट करने की, तो आपका जो तंज है ना वो उसको फिर नुकसान पहुंचाएगा, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। और वो फिर पहली बात तो या तो वो खुद जहनी मरीज बन जाएगा कि अम्मा जो है वो तंज करती रहती हैं, या फिर वो रूहानी मरीज बन जाएगा। क्या मतलब? कि वो खुद भी तंज करना शुरू हो जाएगा लोगों के ऊपर, अम्मा से सीख करके या अब्बा से सीख करके खुद भी लोगों के ऊपर ये तंज का मामला करना शुरू हो जाएगा। तो ये कहते हैं रूहानी मरीज बन जाएगा, क्योंकि ये गुनाह का काम है, ठीक है ना। या तो जिस्मानी मरीज बन जाएगा, क्या मतलब? कि नफसियाती मरीज, ये नफसियाती मरीज जो है ना ये जिस्मानी मरीज है, ठीक है, ये जिस्मानी मरीज होता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो जिस्म का हिस्सा है, तो ब्रेन का अगर डिसफंक्शन हो जाए तो फिर वो जिस्मानी मरीज कहलाएगा। इसी को नफसियाती मरीज भी कह देते हैं। और रूहानी मरीज का मतलब कि नफसियाती मरीज तो नहीं बना लेकिन गुनाह करना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों को बुरे अलकाब से पुकारना शुरू कर दिया, लोगों को जो है वो तंज का शिकार का निशाना बनाना शुरू कर दिया, ये रूहानी मरीज है। तो क्या हम अपने बच्चों को जिस्मानी मरीज या रूहानी मरीज बनाना चाहते हैं? हरगिज नहीं, ठीक है। तो अब अगर हमारे अंदर ये बुरी आदतें हैं तो हमें इनको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, जबर करके, अल्लाह ताला से मदद मांग करके इन बुरी आदतों को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मजाक ना उड़ाएं वाली लफ्ज के ऊपर, और दूसरी बात ये है कि अपसेट है तो उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये जो समझने की कोशिश करना है ना, तो इसमें हम समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को पकड़ करके ना उसके पीछे लग जाओ, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, बताओ 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 बताओ, ठीक है। तो ये जो समझना है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप अब उससे बोलना शुरू कर दें, उसका कान खाना शुरू कर दें, उसका सर खाना शुरू कर दें कि बताओ कि क्या हो गया, ठीक है। हाँ, एक दो दफा पूछना भी होता है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है कि आपने पूछ भी लिया, बेटा क्या हो गया बताइए तो सही, ठीक है। लेकिन अब अगर वो बच्चा नहीं बता रहा है ना, तो ज्यादा मेहनत जो है वो खुद समझने के ऊपर लगाएं बजाय इसके कि उसका सर खाते रहें, ठीक है। तो देखें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, ये जरा सोचें कि वो कहाँ से होकर के आया है, बच्चा या बच्ची कहाँ से होकर के आई है, और दूसरे तरीकों से उसका एतमाद हासिल करने की कोशिश करें, इधर उधर की बातें करना शुरू हो जाएं, ठीक है, और बातों बातों में समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जो हजरत ने फरमाया ना कि समझने की कोशिश करें, इसका ये मतलब है, इसका मतलब सिर्फ जुबान से बोलते रहना कि बताओ मुझे कि क्या हुआ है, ये इसका मतलब नेसेसरीली नहीं, ठीक है। और जब आपको मसला समझ में आ जाए तो फिर मुश्किल सूरत हाल से निकलने में उसकी मदद करें, ही और शी नीड्स योर हेल्प, ठीक है, क्योंकि अभी आप ही उसकी मुरब्बियां हैं और उसकी शेफ हैं, ठीक है। तो बच्चों के मददगार बने। फिर उसके बाद अगला जो उनवान हजरत ने, या हजरत ने तो फिर बयान किया होता है लेकिन उनवान तो फिर किताब छापने वाले लगाते हैं ना, टाइटल्स या हेडिंग्स। तो अगली हेडिंग है, बच्चों को अपने काम खुद करने की तरबियत दें, अपना काम खुद करना। तो फरमाते हैं कि जब बच्चे जरा बड़े हो जाएं तो उनको अपने काम खुद करने की आदत डालें, ताकि वो अपने पहनने ओढ़ने और खाने में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, अपने पहनने अपने खाने अपने ओढ़ने में पूरा एतमाद हो जाए, मतलब दे शुड नो हाउ टू डू दीज नेसेसरी थिंग्स, ठीक है। उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां डाल दें उनके ऊपर, और जब वो उनको पूरा कर लें तो बच्चे को खूब खूब अप्रिशिएट करें, यानी उसकी तहसीन करें। बच्चे अपनी जिंदगी में मुश्किल को हल करके बहुत कुछ सीखते हैं, बाज माए ओवर टेम्परिंग, ओवर टेम्परिंग से यहाँ पे हजरत की मुराद है जो टेम्परमेंट लूज कर जाती हैं, ठीक है, टेम्परमेंट लूज कर जाना यानी गुस्से से बेकाबू हो जाना, बेजा गुस्सा करना। तो ये बेजा गुस्सा करती हैं और बच्चों को उल्टा बिगाड़ देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों पहलू निकलते हैं इस बात के कि ना तो बच्चों को ओवर पैम्परिंग करें। ठीक है, ओवर पैम्परिंग का मतलब क्या होता है? हर काम खुद करके देना, बच्चे से कुछ भी ना करवाना। ठीक है ना, तो ये ओवर पैम्परिंग कहलाता है। ठीक है, यानी बड़ा इंसान जो है ना उसको भी पैम्पर खुद पहना रहे हैं, यानी उसको बाथरूम जाना भी नहीं आता, उसको पैम्पर पहना रहे हैं। तो इस वजह से पैम्परिंग जो है वो अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा बन गया। तो ऐसा ना करें, बल्कि बच्चों के ऊपर छोटी उम्र से ही थोड़ी 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 थोड़ी, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालें, जैसे सुबह को उठ करके अपना बिस्तर खुद से तय करना, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्पून फीड करना भी इसको कहते हैं, पैम्परिंग की तरह से दूसरी टर्म अंग्रेजी की है स्पून फीड करना, यानी खुद चमचे में खाना उठा करके उसके मुंह के अंदर डालना। तो भाई छोटे बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद को थोड़ी अब आप उसको स्पून फीड करना शुरू हो जाए, इससे बच्चे की आदतें जो है वो खराब हो जाती हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे मुआशरे के अंदर, खास तौर पर इंडो पाक मुआशरे के अंदर ये बनती है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, या बड़ी हो जाती है ना, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं ग्रेड्स लाने के लिए, कि उसने जो है ना वो फर्स्ट आना है, ठीक है, और उसने जो है वो ए स्टार ग्रेड लेकर के आना है, और उसने जाहिर है उसके लिए खूब पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, दिन रात जो है वो कूल्हे के बैल की तरह से उसने पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसने ग्रेड्स लेकर के आना है। तो अब जब उसने सारा वक्त पढ़ाई करनी है और बेहतरीन ग्रेड्स ही लेकर के आने हैं, तो फिर उसके पास अपना काम करने का तो वक्त नहीं होगा ना। तो इस वजह से माएं फिर क्या करती हैं, सब काम खुद करती हैं, और जो है ना वो बच्चे बच्ची को जो है वो ग्रेड्स के लाइन पर डाल करके, और फिर उनको अब वो उनको पढ़ने के तो वो असीर हो जाएंगे, लेकिन काम वाम उनको कुछ भी करना नहीं आएगा। ठीक है ना, और जाहिर है कि इसमें भी मर्द और औरत के दरमियान अल्लाह ताला ने जो फर्क रखा है बेटी और बेटा के अंदर, के बेटे के भी इस तरह से पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये जो सिस्टम है अभी एक अलग पूरी की पूरी तफसीली बहस है एजुकेशन सिस्टम वाली, लेकिन फिर भी इनमें फर्क है कि ग्रेड्स के चक्कर में तो इवन बेटे के लिए भी इतना नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन चलो अभी जो काफिरों का बनाया हुआ सिस्टम है तो उसके अंदर रहते हुए तो फिर ये ग्रेड्स ही एक असबाब के दर्जे में, क्या भाई आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो ग्रेड्स की बुनियाद पर मिलेगा वगैरह वगैरह। तो चलो लड़कों के लिए कुछ ये चल जाता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने कमाने की लगाई है, सपोर्ट करने की, खानदान को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर डाली है। तो वहां पर भी कुछ काम तो लड़कों से भी करवाना चाहिए, घर का काम, लेकिन चलो उन्होंने कमाना है, उन्होंने धक्के खाने, ठीक है, तो उनके अच्छे ग्रेड्स की तुक बनती है। लेकिन लड़कियों का अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी कमाने की नहीं लगाई, ठीक है, तो उन्होंने जो काम करने हैं तो उनके लिए तो उनको उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है ना, जिसके अंदर ग्रेडिंग होती नहीं है, राइट। घरदारी, रिश्तेदारी, इसके अंदर ग्रेड्स होते हैं, ए प्लस का कोई ग्रेड मिलता है किसी जीसीएसई बोर्ड से, राइट, कि घरदारी में जीसीएसई बोर्ड ने जो है वो ए ग्रेड दे दिया, और जो है वो इंडिया की कौन से वो बोर्ड होते हैं, एनआईसी बोर्ड या कौन सा बोर्ड है, तो उसने जो है वो रिश्तेदारी निभाने के ऊपर जो है वो फलाना ग्रेड दे दिया। नहीं, इनमें तो ग्रेडिंग सिस्टम होता ही नहीं है ना, काफिरों के बनाए हुए ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो घरदारी रिश्तेदारी के अंदर तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो उनको ग्रेड्स के पीछे जो है वो मत डालें, बल्कि उनको घरदारी और रिश्तेदारी और जो बच्चे की सही तालीम और तरबियत के लिए उनको जिस तालीम की जरूरत है उस तालीम के ऊपर उनको डालें, लेकिन अपने कामकाज जो है वो करना सिखाएं। ठीक है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई। ठीक है, वो ग्रेडिंग साइड वाली तालीम अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाई ही नहीं है। ठीक है, जीसीएसई वगैरह के ग्रेड्स वाली जो तालीम का सिस्टम है ना, ये अल्लाह ताला ने लड़कियों के लिए बनाया ही नहीं है। हमने बनाया है तो हम भुगत भी तो रहे ना उसको। ठीक है, तो तौबा करके उससे जो है वो रुजू करने की जरूरत है। ठीक, सही तालीम जो उनकी जरूरत है वो उनको देने की जरूरत है, जहां पे ग्रेडिंग होती नहीं है। तो इस वजह से उनको इस लाइन पे मत डालें कि तुमने ए स्टार लेकर के आना है, तुमने जो है वो ए प्लस लेकर के आना है, तुमने जो है वो 100 out of 100 मार्क्स लेकर के आना है, चाहे आलिमा कोर्स क्यों ना हो, चाहे आलिमा कोर्स क्यों ना हो, वहां पर भी ग्रेड्स की दौड़ में मत लगाएं अपनी बेटियों को, ठीक है? इल्म की कदर की लाइन पे लगाएं, ग्रेड्स की लाइन पे ना लगाएं, इवन आलिमा कोर्स में भी, ठीक है? तो उनको काम सिखाएं, ठीक है, जिम्मेदारी को निभाना सिखाएं। लड़कों की तो मजबूरी बनी हुई है ना इन काफिरों के सिस्टम की वजह से, कि उनको ग्रेड जो है वो कमाने की खातिर जो है वो लाने पड़ते हैं, तो वहां पे कुछ कुछ इसकी गुंजाइश निकलती है, लेकिन इधर तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो एक तो ये मुसीबत ये बनती है कि माओ ने जो है ना वो ग्रेड्स की लाइन पे डाल दिया होता है, तो अब उनसे कोई काम नहीं करवाना, अब सारा काम खुद करती है, ठीक है? और इसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि बच्चे को जो है वो हर काम जो है वो बच्चे से करवा रहे हैं, और जो काम वो गलत कर रहा है उसके ऊपर उसको भेजा गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो ये दूसरी एक्सट्रीम है, बस परफेक्शन चाहिए उनको, अम्मा हुजूर को, बच्चे से परफेक्शन की तवक्को है, और फिर मारपीट और गुस्सा और तंज करना और उल्टे सीधे हरकतें करना, तो ऐसा जो है वो बच्चे के साथ ना करें, ठीक है? आगे फिर हजरत ने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी लिखी है, जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपको कोई मना नहीं किया कि आप खुद नहीं पढ़ सकती, बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई की एक स्टोरी है, वो आप खुद भी पढ़ सकती हैं इंशाल्लाह, अगली क्लास के अंदर उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। बाकी एक सवाल आया है किसी का कि हाउ टू मेक देम इमोशनली स्ट्रोंग और इंडिपेंडेंट, इमोशनली स्ट्रोंग और इंडिपेंडेंट। देखें, इंडिपेंडेंट की तो अभी इतनी सारी बात हुई है ना, कि तदरीजन जो है वो आप बच्चे को जिम्मेदारियां देते हैं, इस तरह से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो जो मुआशरे में जो लफ्ज इंडिपेंडेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई वो सिखाने से इंसान सीखता है और फिर वो काम करने के काबिल होता है, इसी को इंडिपेंडेंट कहा जाता है, ठीक है? बाकी जो आपने दूसरी टर्म बनाई है ना, इमोशन जो पूछिए, इमोशनली स्ट्रांग, ठीक है? तो ये इमोशनली स्ट्रांग जो है ना, ये इसके लिए कोई चूरन नहीं मिलता मार्केट के अंदर, ठीक है? आजकल एक बड़ी वो मिल रही है ना, हम भी खूब खा रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, तो जाहिर है पेट खराब होता है, तो उसके लिए क्या है भाई, प्रोबायोटिक, ठीक है? तो ये माशाल्लाह अच्छी है, अच्छी चीज है वैसे, माशाल्लाह, ठीक है? दही भी तो प्रोबायोटिक होती है ना, तो आप जो है प्रोबायोटिक जो है वो लिक्विड फॉर्म में बाकायदा मेडिसिन की शक्ल में मिलना शुरू हो गया, तो गोया के ये एक चूरन है आपके पेट को ठीक करने के लिए, हाजमे को ठीक करने के लिए। तो ये इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए ना कोई ऐसा चूरन नहीं मिलता मार्केट के अंदर, कि जो आप अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दें इमोशनली स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? इसका क्या तरीका है, इसके लिए दो बातें अल्लाह ताला ने आपके सवाल के जवाब में अभी इस हाजिस के दिल में दो बातें डाली हैं, ठीक है? बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए, नंबर 1 कि उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ें, ईमानी तरबियत करें, उसके लिए पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा सुने, ठीक है? जिसके अंदर ईमानी तरबियत के ऊपर खास बात हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक जोड़ना, फिर अल्लाह ताला को रूशनास कराना, अल्लाह ताला से है अपने बच्चे का ताल्लुक बनाना, ये होता है इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए नंबर 1 काम, ठीक है? अल्लाह से जुड़े बगैर ये खाम ख्याली में मत रहे हैं कि कोई इमोशनली स्ट्रांग बन सकता है, ठीक है? तो ये एक काम हो गया ईमानी तरबियत कर, और दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा काम जो है ना वो अभी हमने क्लास में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है? वो क्या था कि बच्चों को तंज का निशाना मत बनाए। क्या मतलब, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकती हैं कि बच्चों को माएं या बाप या खानदान वाले खुद इमोशनली वीक करते हैं उल्टी सीधी बातें बोल करके, दूसरों से कंपेयर कर करके, है ना, ताने दे दे करके कि वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है, और उसके कितने दोस्त हैं, और उसने कितने अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए हैं, और तुम तो ऐसी हो, तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता, ये सब जुमले मार मार करके अपने बच्चे और अपनी बच्ची को इमोशनली वीक बनाते हैं। ये मत करें, ये मत करें। तो एक काम बहुत ज्यादा करें और एक काम बहुत ज्यादा मत करें, मतलब बिल्कुल ही मत करें। बहुत ज्यादा मत करें का मतलब उसको मत करने के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करें, नहीं करना है मैंने ये काम, इमोशनली वीक बनाने का काम। ठीक है, तो ये दोनों आप कर लें, बच्चा या बच्ची जो है वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाए। और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो फिर आप उसको तालीम और तरबियत, ठीक है, वो वाली तालीम मत दें जिसके बाद फिर क्या हो कि जब उसके शादी का वक्त आएगा ना तो लोग उसके पाँव देखेंगे, पाँव। ठीक है, वो वाली तालीम मत दें जिसके बाद क्या होता है कि शादी का जब रिश्ता आता है तो फिर रिश्ते लाने वाले क्या देखते हैं, बच्ची के पाँव क्यों देखते हैं? जल्दी से जवाब दें, फिर हम आपकी क्लास खत्म कर देंगे। बच्ची के पाँव क्यों देखते हैं रिश्ते वाले, जल्दी से बता दे कोई क्यों देखते हैं भाई? आजकल जो रिश्ता आता है तो उस रिश्ते में बच्चे के पाँव देखे जाते हैं, क्यों देखे जाते हैं? जी, जल्दी बताएं, क्लास खत्म भी करनी है। या पैर, पैर भी चले कह दें, पाँव या पैर दोनों इस्तेमाल होता है, क्यों देखे जाते हैं? बरकत के लिए देखे जाते हैं, अल्लाह आपकी बरकत के लिए पाँव देखे जाते हैं। अच्छा चले, कोई सही जवाब देना इसका, क्यों देखे जाते हैं भाई पाँव या पैर? साफ सुथरी है कि नहीं, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। जी ठीक है, कहाँ जाती है और कितना कमाती है, ये पाँव इसलिए देखे जाते हैं, ठीक है। इसलिए देखे जाते हैं कि क्या ये लड़की अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या ये अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये देखा जाता है ना रिश्ते में। यानी कितनी, कौन सी डिग्री हासिल करी है इसने, कहाँ पे जॉब करती है, कितना कमाती है, ये मुराद थी असल में। ठीक है, तो उसको उर्दू जुबान में इसके लिए मुहावरा क्या है, पैरों पे खड़ा होना। ठीक है ना, तो क्या माँ बाप ने उसको अपने पैरों पे खड़ा किया है, क्या मतलब कमाने के काबिल बनाया है कि नहीं, ताकि ये हमारे घर में जब आएगी तो ये भी कमाएगी, और फिर उसको खाएगा कौन, खुद नहीं खाएगी, ये नहीं है कि खुद कमाएगी खुद खाएगी, हम इसके पैसे में से कोई हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो उसका जाती पैसा है, हम कैसे ले सकते हैं, नहीं, बल्कि वो घर चलाएगी। ठीक है ना, सास ससुर भी खाएंगे, शौहर भी खाएंगे, घर भी चलाएगी, इस वजह से पैर देखे जाते हैं आजकल शादी करने के वक्त। ठीक है ना, कि पैरों पे खड़ी है कि नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह बचाए ऐसे जगहों से जहां पर रिश्ता करने से पहले लड़की के पैर देखे जाते हैं कि वो पैरों पे खड़ी है कि नहीं। अल्लाह बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।